ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितारेण भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणुं करे च कङ्कणम् हरिचन्दनं सर्वाङ्गे सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपीभिः गोपीस्त्रीभिः परिवेष्टित गोपाल चूडामणि आनन्दलीलामय विग्रहाय धीमावदिगत छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय ओम 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 नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेव को जैसे जैसे वसुदेव मथुरा से वृंदावन ले ही जा रहे थे। कौन किसको ले जा रहे? वसुदेव ले जा रहे वासुदेव को। वसुदेव है पिता श्री वसुदेव और उनके पुत्र है वासुदेव श्री कृष्ण। वसुदेव एक व्यक्ति है, वासुदेव दूसरे व्यक्ति है। ओम नमो भगवते वसुदेवाय नहीं कह सकते। लोग नमस्कार कर रहे हैं, किसको नमस्कार? भगवते। हम लोग वासुदेव को नमस्कार कर रहे हैं जो भगवान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वसुदेव तो भगवान नहीं है, वसुदेव तो पिता है। भक्त है, जीव है, और वासुदेव है उनके पुत्र। तो जैसे वे ले जा रहे थे ऐसे मन में स्मरण हुआ, हमने बात सुनी थी हरिभाव, तो बस वसुदेव सोच रहे थे, वृंदावन की ओर जब गोकुल की ओर जा रहे तो कभी वो तेजी से जाते तो कभी कभी धीमी गति से आगे बढ़ते, द्रुत विलंबित गति उनकी चल रही थी, द्रुत मतलब तेजी से, विलंबित थोड़ा धीरे धीमी गति से। हरि बोल, हरि हरे 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 हरि हरे। एक छंद भी है, द्रुत विलंबित नामक छंद भी है, जब कई श्लोकों का अलग अलग श्लोक या भिन्न भिन्न प्रकार के श्लोक भिन्न भिन्न छंदों में गाए जाते हैं, तो छंदों के कई प्रकार है, उसमें द्रुत विलंबित दौड़ता हुआ द्रुत, फिर विलंबित धीरे धीरे जा। तो वसुदेव कृष्ण तो उनके गोपाल या वासुदेव उनके हाथ में है, मध्यरात्रि का समय सर्वत अंधेरा छाया हुआ है, वर्षा ऋतु है, तो ले जा रहे हैं, ये सोचते हैं कि मैं मेरे बालक को, या बालक का जन्म भी हुआ और उसको सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए गोकुल ले जा रहा हूं, इस बात का अगर कंस को पता चलता है तो क्या करेगा, वो पीछा करेगा, ढूंढते हुए खोजते हुए आएगा, इसीलिए अच्छा है कि मुझे क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए तेजी से जाके जितने कम से कम समय में मेरे लाला को, नंदलाल को या देवकी नंदन को क्या करना चाहिए, मुझे गोकुल में रख देना चाहिए, चलो मैं दौड़ता हूं, तो दौड़ने लगते हैं, तेजी से जाना प्रारंभ करते हैं कंस के भाई से। लेकिन फिर उनके मन में विचार आता, इस गति से मैं अगर जाऊंगा गोकुल तो अब बड़ा तुरंत पहुंच जाऊंगा मैं, तो फिर वहां तो मुझे अपने गोपाल को वहां रखना होगा, गोपाल के बिना ही तो मुझे लौटना है, तो अच्छा है कि मैं जितने धीमी गति से जा सकता हूं उतना ही अधिक संग मुझे प्राप्त होगा गोपाल का, मैं गोपाल के साथ रहूंगा उतना अधिक समय, इसीलिए ऐसा सोचते हुए वे अपनी गति को पुनः मंद गति बनाते हैं। इस प्रकार उनके भाव, विकंस का भय तो दौड़ने लगते, नहीं नहीं अभी भी पहुंच जाऊंगा, फिर कृष्ण से वंचित हो जाऊंगा, कृष्ण के बिना ही मुझे लौटना होगा फिर पुनः मथुरा, नहीं नहीं जितना अधिक समय मैं बिताऊंगा रास्ते में मार्ग में उतना अच्छा ही है, ऐसा सोचे पुनः वे धीरे धीरे आगे बढ़ते, द्रुत विलंबित, कैसी गति, द्रुत और फिर विलंबित, लंबा कर देते उसको। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जस हम गा रहे थे तो ये विचार मन में उठे तो आपके समक्ष उसको रख भी दिया, अब आप जो करना चाहते हो उसके साथ करो। जरूर कुछ करोगे आप, चिंतन भी कर सकते हो। क्या करना होगा? एक तो मनन कर सकते हो वासुदेव का जो भाव है, वसुदेव का जो भाव है, वसुदेव का जो वात्सल्य है, वसुदेव का जो संबंध है भगवान के साथ, वो कैसा है? वात्सल्य भाव, वत्सलता, जैसे गाय का बछड़े के प्रति जो प्रेम होता है उसका नाम क्या होता है? वात्सल्य। वात्सल्य कहते हैं, वत्स, वत्स मतलब बछड़ा। तो बछड़े का जो, बछड़े के प्रति जो गाय का प्रेम, तो फिर वो चाटने लगती है नहीं बछड़े को, फिर बछड़ा अपना पूंछ उठाता है, उसको हिलाता है, तो स्नेह जो है आदान प्रदान गाय और बछड़े के मध्य में, उसको कहा है वात्सल्य। गाय का अपने वत्स, अपने अपत्य के प्रति जो प्रेम, वात्सल्य। तो यह वसुदेव है, मानो गाय और कन्हैया है उनका वत्स, बछड़ा, ऐसा प्रेम। श्रीमद् भागवत महात्म्य पर आधारित आप आज नाटिका भी देखोगे, गोकर्ण और धुंधकारी की जो कथा है, प्रसंग है, उस पर आधारित। तो भी हम और थोड़ा सा समय बिताएंगे भागवत महात्म्य के श्रवण कीर्तन में, फिर आगे बढ़ेंगे भागवत में प्रवेश। तो सुत गोस्वामी ही जो दूसरी कथा हुई थी, तीन कथाएं कल आपको, आपने नोट भी किया था या तो मन में या नोटबुक में, दूसरी कथा कहाँ हुई? दक्षिण भारत में। और तीसरी कहाँ हुई? हरिद्वार। बस तीसरी कथा के कथाकार कौन थे? चतुष कुमार। और श्रोता कौन थे? नारद मुनि जी। तो उस कथा में, उस कथा का अब समापन होने ही जा रहा था। सूत उवाच, सूत गोस्वामी वहां थे, गंगा के तट पर जो कथा हुई, तीसरी कथा की बात चल रही है, वहां भी सुत गोस्वामी थे। तो वो कहते हैं कि कथा का जैसे समापन होने जा रहा था, वहां कथा के अंत अंत में, तो वहां शुकदेव गोस्वामी पहुंच गए। शुकदेव गोस्वामी और सुत गोस्वामी जैसे कथा के स्थल पर पहुंच रहे थे, व्यास आत्मजो उनको कहा। व्यास आत्मज है, व्यास के पुत्र है शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव, शुक सुत, दो अलग अलग नाम है, शुक और दूसरे सुत। तो शुकदेव गोस्वामी श्रील व्यास देव जी के पुत्र है, व्यासात्मज। ज्ञान महाबुद्धि चंद्रमा, ज्ञान महाअवधि है वे, ऐसे सुंदर शब्दों का उपयोग है। देखिए ज्ञान का महा अवधि, अवधि क्या होता है, सागर। तो संस्कृत भाषा में अलंकृत बनाते हैं उसको, ज्ञान महा अवधि, ज्ञान के महासागर वे सुखदेव गोस्वामी चंद्रमा, और फिर उनसे जो प्रकाश कोटि सूर्य सम प्रभा, कल हम सुन रहे थे सुत गोस्वामी उनके ज्ञान के ज्योति का जो प्रखर प्रकाश, उसकी तुलना सूर्य के साथ की हुई थी, तो यह सुखदेव गोस्वामी के ज्ञान की जो ज्योति है उसकी तुलना चंद्रमा के ज्योति के साथ की हुई। प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै, तो जहां कथा हो रही थी गंगा के तट पर, तो लोगों ने देखा, श्रोताओं ने देखा कि सुखदेव गोस्वामी प्रवेश कर रहे हैं उस कथा स्थान पर, और बड़े प्रेम से भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मसरानाम सताम, ऐसे कहते हुए वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलन महामी प्रते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रुभिस्तत् क्षणात्। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद् वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसम एवं अमलम ज्ञानम परम गीयते, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए वे देख नहीं रहे थे, उनके पास सामने कोई किताब को देखते हुए नहीं कह रहे थे, उनको तो सारे कंठस्थ है, सारा भागवत उनको कंठस्थ है। केवल कंठस्थ ही नहीं, क्या कहना होगा, हृदयस्थ, हृदयंगम किया उन्होंने, केवल कंठ में ही उसको नहीं बिठाया, जैसे तोता राम का नाम को कहाँ बिठाता है, कंठ में ही होता है, उसके हृदय में नहीं होता, इसलिए तोते लगा फैरट कह दे, ये रिपीट कैसे करता है, जैसे तोता दोहराता है कोई बात जो सिखाई है, रैम रैम रैम, तो कंठ से बोलता है। तो शास्त्रों की वाणी वचन कहाँ से बोलने चाहिए, कहाँ रखने चाहिए, उनको हृदय में रखने चाहिए, और बोलने भी चाहिए वही से, या तो गायन कहते हैं, गायन भी या तो कंठ से गायन होता है, या गायन कहाँ से हो सकता है, हृदय से भी हो सकता है, कहाँ से होना उचित है, हृदय से जब गायन होता है, क्योंकि हम लोग हृदय में रहते हैं, हम लोग है कौन, हम लोग जो आत्मा है, आत्मा का स्थान हृदय में है, कठोपनिषद में यह बात कही है, इस शरीर को एक वृक्ष कहा है, और इस वृक्ष में दो पंछी रहते हैं, सर्वस्य च अहम् हृदय सन्निविष्टः, भगवान ने तो कहा मैं सबके हृदय में रहता हूं, सब मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। तो उन्हीं के बगल में दूसरा एक पंछी, आत्मा, आत्मा एक पंछी और दूसरा परमात्मा दूसरा पंछी, दो पंछी रहते हैं हृदय में रहते हैं, तो वहां से आत्मा की पुकार होनी चाहिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। کس کی پکار یہ؟ آتما کی پکار. آپ تو کہو گے تو مکھ پکار رہا ہے. ویسے آتما مکھ کے بنا بھی آتما پکار سکتا ہے, آتما بول سکتا ہے, اور کان کے بنا آتما سن بھی سکتا ہے. ویسے وقتا تو آتما ہی ہے, وہ جو اسپیکر ہے آپ کے سمکش, باکس اسپیکر, اسپیکر دیکھو کتنے اسپیکر ہے, اور کئی سارے اسپیکر کتنے ہیں, دو ہے. اچھا میں نے سوچا تھا ایک ہی اسپیکر ہے. بھاگوت کے کتنے اسپیکر ہے؟ ٹھیک ہے, دو اسپیکر کو بولنے دو. بول رہے ہو اسپیکر؟ اور اسپیکر تو تبھی بولیں گے جب اس میں کوئی بولے گا. تو یہ مکھ بھی کیا ہے؟ ایک اسپیکر ہے, باکس اسپیکر. لیکن جب تک آتما نہیں بولے گا تب تک مکھ نہیں بولے گا. اسی لیے ہی تو چلا گیا اور چلا گیا, بول نہیں رہا. اے کتنی انگلی ہے, ہاں مطلب جیوت ہے ابھی تک. لیکن جب جو نہیں رہا, اور کبھی کبھی آنکھیں کھلی رہتی ہے, وہ نہیں رہا, اس نے آخری سانس لی, اس کو پوچھو اے کتنی انگلی ہے, آنکھیں کھلی ہے کتنی انگلی ہے, وہ بولے گا؟ کیوں؟ آتما نہیں ہے تو بولنے والا کون ہے؟ آتما ہے. آتما نہیں ہے اسی لیے سن بھی نہیں رہا, بوم بھی مارو اس کے کان میں. نہیں تو اے چپ چپ, اے شانت رہو کہتا تھا پہلے. کتنا شور گل کر رہے ہو, چھوٹے بچے بھی کچھ بات کر رہے, اے چپ چپ. لیکن ابھی کوئی بوم مار رہا ہے کہ کان میں تو کوئی شکایت نہیں ہے, کیونکہ وہ سن نہیں رہا. سننے والا کون؟ آتما. بولنے والا کون؟ تو یہی بات ہے, پکارنے والا آتما. تو آتما پکار سکتی ہے تو کنٹھ میں نہیں ہے آتما, آتما ہردے میں ہے. تو سکھدیو گوسوامی پریمنا پٹھن بھاگوتم, شریمد بھاگوت کا اچارن کرتے ہوئے اس بھاگوت کتھا سلی کی اور آ رہے. تو اس کتھا میں سکھدیو گوسوامی پہلے تو کئی سارے تھے ہی, آپ نے سنا, رشی منی بھی تھے سارے, تیرتھ بھی تھے سارے, شاستر بھی تھے, ساری پوتر ندیاں بھی وہاں پہنچی تھی. اب سکھدیو گوسوامی بھی آ گئے اور سوتو واچا مدھے سبھایام ہریر آبیراسیت. اتنے میں ہری بھی آ گئے, بھگوان بھی آ گئے. اور کیول اکیلے نہیں آئے, پرلہاد بلی فالگنا آدی بھی برتہ, ان کئی بھکتوں سے گھرے ہوئے بھگوان مدھیہ میں, اور کئی سارے بھکت منڈلی ان کے ساتھ آگے پیچھے چل رہی ہے. وٹھو ماسا لیکور واڑا سنگے گوپال انسا میڑا, سبھی جا رہے سر گوپال ان کے ساتھ جا رہے ہیں. تو بھگوان جب وہاں پہنچے, بھگوان کو وشیش آسن دیا. درشٹوا پرسنم مہد آسنے ہریم, ایک مہان آسن پر وراجمان کرائے بھگوان کو, ہری کو चक्रिरे कीर्तनम, और फिर कीर्तन शुरू हुआ। और जब कीर्तन शुरू हुआ तो और कौन आए, भवो भवान्या कमलासनस्तु, भव आए, भवानी आ गई। भव कौन है, शिव जी, और भव की पत्नी का नाम भवानी या रुद्र रुद्रानी, इस प्रकार नाम चलते हैं। तो भव आ गए, भवानी आ गई, कमलासनस्तु, कमल किनका आसन है, ब्रह्मा जी का है, पहले जीव ब्रह्मा कमल पर जिनका जन्म हुआ, और उसी को आसन बना के वे 1000 वर्षों तक जिन्होंने तपस्या की वे कमल आसन। तत्र आगमत कीर्तन दर्शनाय, वे भी वहां पहुंचे, शिव आए, ब्रह्मा आए, कीर्तन के लिए आए, दर्शन के लिए आए। और कीर्तन ऐसा जम के कीर्तन हो रहा था, प्रह्लाद तालधारी, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद आए थे, वे करताल बजा रहे थे, तो प्रह्लाद चंचल गति, जो बड़े लठ होते वो बजा नहीं सकते, थोड़ा पतला होना चाहिए, क्योंकि करताल तो बड़े तेजी से बजता है। तो प्रह्लाद तालधारी, उद्धव कांशधारी, और उद्धव के पास झांझ थे, झांझ ऐसा नहीं बजाए थे वे, अरे वाह अरे वाह, विनाधारी विनाधारी विना धारण किए थे कौन, सुर ऋषि ही, सुरों के नारद ऋषि वीणा धारण किए थे। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुन अभूत, शायद इस प्रकार का परिचय हमें अर्जुन जी का नहीं है, लेकिन अर्जुन के संबंध में कहा है स्वर कुशल, स्वर गान करने में अर्जुन कुशल है, तो वे आलाप दे रहा जो चलता है ना, आलाप, आलाप के साथ आलाप दे रहे थे अर्जुन। इंद्रो वादि मृदंगम, इंद्र बजा रहे थे, इंद्र के राजधानी का नाम अमरावती से आए हुए, मृदंगम, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार, और कुमार बीच बीच में क्या करते थे, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, और फिर श्रील व्यास देव जी की वहां भूमिका थी। यत्राग्रे भाव वक्ता व्यास पुत्रो बभूव, तो व्यास पुत्र व्यास नंदन श्रील सुखदेव गोस्वामी भाव भंगी, अलग अलग भाव व्यक्त कर रहे थे, भाव होते भाव, मुद्रा भाव, या भाव अष्ट भाव विकार भी है। तो ये सब जब कीर्तन हो रहा था, भगवान वहां आसन पर विराजमान, सारी भक्त मंडली वहां जम के कीर्तन कर रही थी, सारे देवता वहां पधारे हुए थे, ब्रह्मा थे, शिव जी भी थे, ब्रह्मा बोल रहे होंगे, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पंचमुखे महादेव राम राम हरे हरे। तो ब्रह्मा अपने चतुर्मुखों से, ब्रह्मा के कितने मुख है? चार, लेकिन पांच मुख वाले भी ब्रह्मा है, और छह और दस और हजार सौ हजार मुख वाले भी ब्रह्मा है। अभी नहीं बताएंगे आपको उनके संबंध में, लेकिन ये नहीं समझना केवल चार मुखी ब्रह्मा ही है, क्योंकि जब ब्रह्मा आए उन्हें कहना प्रारंभ कर ही दिया लेकिन पूरा नहीं बताएंगे। ब्रह्मा जब द्वारका में आए, मिलना था भगवान से, तो द्वारपालों ने रोका, ओ आप कौन हो? हम ब्रह्मा आए हैं, ब्रह्मा आए हैं, जाके बता दो प्रभु जी को, द्वारकाधीश जी को, हम ब्रह्मा आए। तो द्वारपाल गए तो उनका, ब्रह्मा आए आपको मिलने के लिए? तो भगवान ने कहा कौन से ब्रह्मा आए हैं? तो द्वारपाल दोबारा भागे दौड़े गेट पर गए, हा 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 आप आ तो सकते हैं, लेकिन पहले प्रभु जी जानना चाहते कि आप कौन से ब्रह्मा आए हो। तो ब्रह्मा ने जब यह बात सुनी तो ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए। उन्होंने भी सोचा था कि मैं तो अकेला ही तो ब्रह्मा हूं, कौन से मतलब कई हो गए, और भी ब्रह्मा है क्या? तो जो भी है कहो, बता दो कि चतुर्मुखी ब्रह्मा, चार कुमार का पिता श्री मैं ब्रह्मा आ चुका हूं। तो फिर भगवान ने उनको प्रवेश दिया, आ जा। तो फिर जैसे मिले भगवान से, तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा प्रणाम वगैरह तो किया, दंडवत प्रणाम किया अपने चार, उनके सिर तो मुगुट भी चार, वो सारे भगवान के चरणों को स्पर्श करते हुए साष्टांग दंडवत किए। साष्टांग आप समझ रहे ना भी, साष्टांग अंग भी, और मुख से कह भी रहे थे कोई स्तुति मंत्र प्रणाम, और उनका मन वही था मनपूर्वक, जबरदस्ती नहीं, डंडा लेके कुछ प्रणाम करवा रहा है एज ए ड्यूटी, प्रेम से मनपूर्वक। तो प्रणाम करके उठे और फिर बिठाए जब उनको, तो उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या कैसा प्रश्न रहा आपका प्रभु जी? थोड़ा आपने पूछा, द्वारपालों से पूछवाया आपने कि कौन से ब्रह्मा आए, उसका मैं थोड़ा बड़ा भ्रम में पड़ा हूं जब से आपने ये प्रश्न आपका मैंने सुना कि कौन से ब्रह्मा। तो भगवान ने कोई जवाब तो नहीं दिया, या दूसरे ढंग से जवाब दिया। तो भगवान ने क्या किया, थोड़ी देर में ब्रह्मा ने देखा, चतुर्मुखी ब्रह्मा ने देखा, और एक व्यक्ति आया, 1 2 3 4 ओ इसके 5 सिर है। तो उन्होंने प्रणाम किया, भगवान ने उनको आसन दे दिया। ए! और एक व्यक्ति आ गए, 1 2 3 4 5 6 उनके 6 सिर है, फिर 7 सिर वाले, फिर 8 सिर वाले, ऐसे आते रहे, 10 सिर, 100, 100, 1000, 10,000, ऐसे सिर वाले ये आते रहे, प्रणाम करते हुए अपने आसन ग्रहण करते रहे। उसी के साथ भगवान की व्यवस्था से जिस भवन में मिल रहे थे, शुरुआत में तो कुछ इतना विशाल नहीं था, तो भी विशाल था, लेकिन जैसे ये सब व्यक्तियों का प्रवेश होता रहा, वो भवन भी उसका विस्तार होता रहा। तो इतनी सारी जब भीड़ हो गई, इतने सारे सिर वाले व्यक्तियों की, तो पहले जो ब्रह्मा चतुर्मुखी, वो तो सोच रहे मैं तो एक कई मच्छर ही हूं यहां, मैं तो कोई मक्खी भी नहीं। चार, पांच और दस और सौ और हजार शिर वाले कौन थे? ये अलग अलग ब्रह्मा थे, ब्रह्मा, अलग अलग ब्रह्मांडों से भगवान ने उनको भी बुला लिया, बगल वाले जो ब्रह्मांड है। महाराष्ट्र में बड़ी प्रसिद्ध, हम लोग सुनते रहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। भगवान कैसे हैं? अनंत, एक तो केवल कोटि ब्रह्मांड नायक नहीं, एक कोटि ब्रह्मांड के नायक। कितने कोटि? अनंत कोटि। कोटि बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ दिया? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण है। तो उस प्रात्यक्षिक, उस डेमोन्स्ट्रेशन से हमारे इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है वो समझ गए कि मैं अकेला ही ब्रह्मा नहीं हूं, ब्रह्मा तो कई है, हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है, एक एक ब्रह्मा से एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि करवाते हैं भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो वे सारे ब्रह्मा क्या करते हैं? अपने मुखों से, हमारे ब्रह्मा चतुर्मुखी है तो अपने मुख से क्या करते हैं? कृष्ण कृष्ण, हरे हरे बोलते हैं। फिर शिव जी का भी एक रूप है, अभी अभी हम लोग बनारस वाराणसी में थे, तो जब हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी हिंदू विद्यापीठ के शिव मंदिर में जब हम गए, तो आपने देखा होगा पंचमुखी महादेव, हमने पहली बार देखा, हम लोग तो सुनते थे, मैं भी सुनता रहा अब तक, लेकिन कुछ दिन पहले प्रथम बार मैंने पंचमुखी महादेव का दर्शन किया। वहाँ विग्रह थे, मूर्ति थी पंचमुखी महादेव। तो पंचमुख है तो पंचमुखों से क्या करते हैं वे? राम राम, हरे हरे, अपने मुखों का उपयोग करते हैं। उनके पांच मुख है तो आंखें कितनी होगी? दस की पंद्रह, वो त्रिनयन भी कभी तीसरी आंख भी खोल देते हैं। इनकी इतनी आंखों से वे क्या करते होंगे? भगवान का दर्शन करते हैं, तभी भी तृप्त नहीं होते हैं। वे सोचते कि मेरे केवल पांच ही मुख है, कितना अच्छा होता कि मेरे पचास मुख होते तो मैं पचास मुखों से भगवान का गान करता। अरे मेरी इतनी आंखें हैं, और वो भी गोपिया के, वो भी पलकती है तो उस समय के लिए हम दर्शन नहीं कर पाती। कैसा है ये ब्रह्मा? बुद्धू है। कैसा शरीर बनाया इस ब्रह्मा ने, जिस शरीर में आंखें कैसी है, बंद हो जाती है। तो उतने समय के लिए क्या होता है? वो दर्शन खंडित होता है। ऐसा क्यों बनाया शरीर, मूर्ख कहीं का, ऐसे गोपियां गालियां देती है विधाता को। तो महाराष्ट्र के भक्त भी ऐसे भगवान को कहते, भगवान को दोष देते हैं कि बेड़ा कुंभार करे। भगवान कैसे है? बेड़ा कुंभार। तू से घड़े भी सी, तू से फोड़ी सी, तू बेड़ा कुंभार विठला, तू बेड़ा कुंभार, तू स घड़वी से, तू स फोड़ी से, तू स घड़वी से, तू स फोड़ी से, तू बेड़ा कुंभार विठला, तू बेड़ा कुंभार। तो विठल हे विठोबा तुम कैसे हो, तो कुम्हार हो तुम लेकिन बेड़े हो तुम, ऐसा कुम्हार तो हमने और कहीं नहीं देखा है। स्वयं ही घड़े जो बना दे और स्वयं ही अपने घड़े बनाए उसको फोड़ दे, ऐसा कुम्हार तो हमने कभी और कहीं तो देखने में नहीं है, लेकिन तुम ऐसा हो, ऐसा कुम्हार तुम हो, ये घड़े तुमने ही बनाए, ये मटके तुमने बनाए। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये घड़े सो भी जाते हैं, फिर मंत्र पुकारना पड़ता है, मंत्र फूकना पड़ता है कुछ जान डालने के लिए उस, ताकि प्राण आ जाए। तो तुम ही बनाते हो घड़े, तुम ही फोड़ते हो घड़े, कैसा हो तुम घड़े, कैसे हो, इकड़े तिकड़े सोही कड़े, आनंदी आनंद घड़े, लेकिन तू तो घड़े फोड़े, कैसे हो तुम घड़े विठला वेड़ा कुंभा। तो वह गोपियां भी दोषारोपण कर रही है, तो चार कुमार तो ब्रह्मा भी प्रभु का नाम को पुकारते हैं, शिव जी भी नाम को, सभी देवता इंद्र मृदंग बजा रहे, आप देख ही रहे हो, ईश्वर एकला कृष्ण आर सब भृत्य, बस ईश्वर परमेश्वर कृष्ण ही अकेले है, बाकी सब तो उनके सेवक है, आर सब भृत्य सारे सेवक है, देवता सेवक है, मनुष्य सेवक है। फिर राम भी कृष्ण है, राम ही कृष्ण है, अवतार अलग है, सारे अवतार मतलब कृष्ण ही हो गए। ईश्वर एकला कृष्ण जब हम कहते हैं मतलब ईश्वर में, या कृष्ण मतलब कृष्ण के सारे अवतार आ गए, लेकिन देवता भगवान के अवतार नहीं है, ये समझने की बात है। देवता कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। सारे अवतार कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। तो कृष्ण के अवतार है, और कृष्ण अवतार भी नहीं है, ये भी समझने की बात है। कृष्ण कौन है, कृष्ण अवतारी है। इसी सभा में कुछ केजी के स्टूडेंट बैठे हैं, केजी एलिमेंट्री, तो कुछ पीएचडीज भी बैठे हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स भी बैठे हैं, तो ऐसा क्लास हमारा है, ऐसे क्लास तो नहीं होते, अलग अलग करते हैं, ओके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड फिर हाई स्कूल, लेकिन इस धर्म सभा में सभी बैठे हैं, एबीसी करने वाले भी एबीसी सीख रहे हैं, और फिर निबंध लिखने वाले एबीसी से आगे हो गया, एबीसी भी सीखा, शब्द भी सीखे, वाक्य रचना भी सीखी, निबंध लिख रहे हैं। तो एबीसी श्री गणेश वाले भी बैठे हैं, और पहुंचे हुए महात्मा भी बैठे हैं, तो कुछ जानते हैं, इसीलिए वे कह रहे, जवाब दे रहे हैं, आंख बंद करे के जवाब दे रहे हैं, मतलब कंठस्थ हो गया। कंठस्थ नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, हृदयस्थ होना चाहिए। कंठस्थ होना मतलब ज्ञान हुआ, और हृदयस्थ होना मतलब क्या हुआ, विज्ञान हो गया। ज्ञान विज्ञान सहितम ब्रह्मकर्म स्वभावजम, केवल ज्ञान से काम नहीं होगा, ज्ञान का विज्ञान مطلب عمل جب کرتے ہیں اس گیان سنی ہوئی پڑھی ہوئی باتوں پر جب عمل ہوگا تو کیا ہوگا؟ وگیان ہوا. ہاں اس بوتل میں شہد ہے. شہد کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، مدھور ہوتا ہے، مدھو. یہ کیا ہوا؟ گیان ہوا. لیکن پھر ہم نے جب ڈھکن کو کھول بھی دیا اور جب اس کو پی رہے ہیں تو آسوادن کر رہا ہے جو اس شہد کا، تو کیا ہوا؟ پھر وہ عمل ہوا. اور گیان کا کیا ہوا؟ وگیان ہوا. تو جو پی ہی رہا ہے شہد، اس کو بتانے کی آوشیکتا ہے کہ اے یہ شہد کیسا ہے، سمجھتے ہو مدھور ہے؟ اس کو بتانے کی آوشیکتا ہے کیا؟ آوشیکتا نہیں ہے، وہ انوبھو کر رہا ہے کہ یہ شہد کیسا ہے، مدھور ہے. تو گیان وگیان سہیتم برہم کرم سوبھاوجم، براہمن گیان کو بھی جانتے، وگیان میں بھی نپون ہوتے ہیں، کشل ہوتے ہیں. تو کرشن ہے، کرشن جب کہتے تو کرشن کے سارے اوتار بھی آ گئے، لیکن کرشن کے اوتار ہیں سبھی. اہم سروش پربھوہ، بھگوان شروت، کرشن شروت ہے سبھی اوتاروں کے. کرشن اور اوتار یہ سوامی ہو گئے، اور دیوتا جو سورگ میں رہتے ہیں سارے منش یہ سب ان کے سیوک ہے، اوتاروں کے سیوک، کرشن کے، رام کے، یہ دیوتا بھی سیوک ہے. تو دیوتا جن کی سیوا کرتے ہم بھی انہی کی سیوا کرنی چاہیے ہمیں، یہ بھاگوت سکھاتا ہے. دوسرے پران اور کچھ سکھائیں گے، لیکن بھاگوت پران صحیح سدھانت کو سکھائے گا. ایسا بھید بھی ہے اور پرانوں میں اور اس بھاگوت پران میں انتر ہے. کتنے پران ہیں؟ 18 پران ہیں. پرانا نام ادم تتھا دیوانام اچتو یتھا، سارے دیووں میں شریشٹھ کون ہے؟ اچیوت. بھاگوتم میں کہا دیوانام اچتو یتھا، سارے دیووں میں جو 33 کوٹی دیو ہے ان میں اچیوت، اچیوت مطلب کون ہے؟ کرشن. اور اچیوت کیوں کہا؟ جو چیوت نہیں ہوتے، جو گرتے نہیں، ان کا پتن نہیں ہوتا، اسی لیے اچیوت کہا، اچیوت اچھوتا. تو اچھوت سارے دیووں میں شریشٹھ اچھوت ہے. پرانا نام ادم تتھا، اسی پرکار سارے پرانوں میں یہ جو بھاگوت پران ہے شریشٹھ پران ہے. 18 پرانوں میں شریمد بھاگوت پران شریشٹھ پران ہے. اسی لیے بھاگوت پران، کیونکہ آیو تھوڑی الپ ہے ہماری، الپ آیوشی ہم ہے، تو یہاں رشی منی جو آئے تھے اور سوت گوسوامی نے، ویسے آگے آنے والی ہے بات، اگر وہاں پہنچ سکتے ہم تو دیکھتے ہیں. تو یہ کیرتن ہو رہا ہے، کیرتن کی اور واپس لوٹ ہم لوگ. کیرتن کہاں ہو رہا ہے؟ ہریدوار میں، گنگا کے تٹ پر، اس کتھا کے سماپن کے سمے سکھدیو گوسوامی آ گئے، کیرتن شروع ہوا، برہما آئے، شیو جی پہنچے، کیرتن جاری ہے. کیرتن میں کون کون سے وادی بجا رہا ہے اس کا ورنن ہم نے پڑھا سنا. ننرت مدھی ترکمیو تتر، اور اس کیرتن میں کئی سارے نرتیہ بھی کر رہے ہیں، اور نرتیہ کرنے والوں میں تین کی اور ہمارا دھیان آکرشت کیا جا رہا ہے. وہ تین کون ہیں؟ کون تین ہیں؟ بھکتی ہے، گیان ہے، ویراگیہ ہے. ये तीनों ने भी नर्तन नृत्य शुरू किया। जब कथा के लिए आए थे तो भक्ति तो कुछ ठीक थी, लेकिन ये ज्ञान और वैराग्य का हाल बड़ा बुरा हाल, उनको तो ऐसे उठा के ही वह बिठाया था, मन उनकी जान जा रही थी ज्ञान और वैराग्य की। लेकिन जब उन्होंने अभी भागवत कथा सुनी तो हरि ने प्रवेश किया, कथा ही हरि है। प्राणंती, कथा क्या करती है? कथा ही हमारा प्राण है, हम जीवित होते हैं, पुनर्जीवन मिलता है कथा से, भागवत कथा से। तो वो नृत्य करने लगे। आप भी जैसे प्रातःकाल में ही कथा का दूसरा ही सत्र था तो आपने दूसरे सत्र में ही नृत्य करना शुरू किया। अब सातवें सत्र तक देखते हैं कुछ और भाव लोटांगन। अच्छा होगा, अब अपने अपने गांव घर लौटोगे कैसे? नृत्य करते हुए। नहीं तो ऊपर देख रहे हैं तो समझेंगे कैसी हुई आपकी यात्रा। तो नृत्य करते हुए अगर लौट सकते हैं, नाचते हुए गाते हुए, नर्त मध्ये, तो तीनों नृत्य कर रहे थे। हरि ही प्रसन्नो अपि, तो सभी से हरि प्रसन्न थे, उन सभी उपस्थित भक्तों से, देवताओं से, श्रोताओं से, कीर्तनकारों से, भगवान बड़े बेहद खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। तो भगवान ने कहा, वरम वृणुध्वम, आप सब वर मांगिए। भगवान प्रसन्न थे तो खुशी खुशी में के, आप जो चाहे मुंह मांगा वर, उसका दान होगा, मैं वरदान दूंगा, आप वर मांगिए। तो सभी प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगा। और वो वर ये था कि जैसे इस वक्त प्रभु आप पधारे हो कथा में, तो भविष्य में जब जब भागवत कथा होगी तो उस कथा में भी आप पधारिए। हाँ, तो भगवान ने कहा तथास्तु। वैसे ही होगा भविष्य में, जब जब जहां पर कथा होगी, यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि, वहां मैं रहूंगा। नाहं वसामि वैकुंठे न च योगिनां हृदये, शायद योगी के हृदय में शायद मैं नहीं मिलूंगा, या वैकुंठ में भी कभी शायद मैं नहीं मिल सकता हूं, लेकिन वहां पर जरूर मैं मिलूंगा जहां मेरी कथा एकत्रित, भक्त एकत्रित होके जब मेरी कथा गान करते तो वहां मैं रहूंगा। तथेति च उक्ता उक्त्वा अंतरधीयत अच्युतः, तो इतना कह के, हाँ हाँ वैसे ही होगा, प्रभु ने कहा और भगवान अंतर्धान हुए। तो फिर जहां भगवान पधारते हैं तो सारा संसार वहां पहुंच जाता है, सारे तीर्थ वहां पहुंच जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया, पुनः वर्णन है। इस नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम मासता, हजार वर्षों का सत्र होगा, होने वाला था। उस सत्र में सम्मिलित होने हेतु शौनक आदि ऋषि यहां पहुंचे। स्वर्गाय या स्वर्गाय को वैकुंठ प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति के हेतु वे यहां पहुंचे थे। या स्वर्ग मतलब स्वर्ग ही नहीं, या स्वर्ग की व्याख्या आचार्यों ने वैकुंठ की है, वैकुंठ प्राप्ति के लिए वे यहां आए थे। तो एकदा तो मुनया, एक समय की बात है, प्रातः काल का समय, सुतम आसीनम, सुत गोस्वामी विराजमान थे अपने आसन पर, प्रप्रचुर इदम आदरात, बड़े ही आदर पूर्वक शौनक मुनि पूछे। ऐसा प्रसंग हम लोग दो दिन पहले भी सुन रहे थे, वो पद्म पुराण की बातें जिसमें भागवत महात्म्य समझाया है। तो पुनः पुनः शौनक मुनि पूछते रहे सुत गोस्वामी से, उस दिन भी पूछा था, आज भी पूछ रहे हैं। ऋषयः उचुः, ऋषि मुनियों ने पूछा या शौनक मुनि ने उनकी ओर से पूछा, त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानघ अख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। इससे यह स्पष्ट होता है नैमिषारण्य में केवल भागवत की ही कथा नहीं हुई, यह भागवत पुराण ही उन्होंने सुत गोस्वामी ने नहीं कहा, नहीं तो कई लोगों के मन में प्रश्न है, 1000 वर्षों तक यहां रहे तो ये भागवत कथा तो उतनी लंबी चौड़ी तो है नहीं। तो यहां और यज्ञ भी कर रहे थे, अपनी साधना भी है और कथा भी हो रही है, तो उन्होंने पुराणों की कथा, पुराणानी, पुराणों की कथा की, मतलब कितने पुराणों की, पहले 17 पुराणों की, अंत में फिर 18वें भागवत पुराण की भी कथा, सारे पुराणों की कथा यहां हुई है। और श्रीमद् भागवत पुराण में तो 18,000 श्लोक है, कितने हैं 18,000 श्लोक, तो कुछ तो 75,000 श्लोक वाले भी पुराण है। इसी श्रीमद् भागवत के अंत में 12वें स्कंद में सुत गोस्वामी वैसे समझाए हैं, हर पुराण में कितने कितने श्लोक है, तो अधिकतर पुराण पुराणों की संख्या, श्लोकों की संख्या श्रीमद् भागवत पुराण से अधिक है। तो ये सारे पुराण कहे गए यहां और सारे इतिहास यहां कहे गए, कई सारे इतिहास, महाभारत भी इतिहास है। महाभारत क्या है? इतिहास है, इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री। एक थे राजा, एक थी फिर क्या रानी, इतने साल पूर्व, ईस्वी सना पूर्वी, ये वो जो लोग कहते हैं ऐसा इतिहास है। ये महाभारत क्या है? इतिहास है, महान भारत का इतिहास। उस इतिहास का इसीलिए महत्व, क्योंकि उस इतिहास, उस काल के, उस ऐतिहासिक इतिहास के काल में ही तो भगवान कृष्ण थे पृथ्वी पर, इसीलिए उस इतिहास का अध्ययन करना अनिवार्य है। इतिहास मतलब फैक्ट, जो घटित घटनाएं उसका वर्णन, कितने साल पहले और कहां पर कौन उन्होंने क्या किया, इसको इतिहास कहते हैं। ऐसा इतिहास है महाभारत। ये दंत कथा, मराठी में दंत कथा कहते, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये कल्पना नहीं है महाभारत की कथा। और रथ मतलब ये शरीर क्या है? कुरुक्षेत्र में जो रथ, ये शरीर ही रथ है। पांच पांडव मतलब पांच इंद्रियां है, और हमें जो दुर्गुण है, दुर्गुण सब सुगुण अच्छे गुण, और दुर्गुण जो अच्छे गुण नहीं है वो कौन है? कौरव है। ऐसे इस भाषा में समझाया जाता कई बार, और उसका जो ऐतिहासिक महत्व है उसको समाप्ति करते हैं। आजकल के जो बुद्धिजीवी जो है, इंटेलेक्चुअल बीइंग्स, पाश्चात्य देश से प्रभावित जो इस देश के आज भी नागरिक है, जिनको भारत के गौरव का अभिमान नहीं है या जानते ही नहीं है, या डार्विन के सिद्धांत पढ़ पढ़ के उनके दिमाग में ये बात बसी हुई है कि 5000 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मानव तो गुफा में रहता था, केव केव मैन गुफा में रहते थे, और लड़ाई के लिए क्या करते थे? पत्थर पत्थर फेंक देते थे दूसरों की ओर, या ज्यादा से ज्यादा पेड़ की कोई डाली शाखा लेके आ जाओ, पीटना शुरू कर देते। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था 5000 वर्ष पूर्व। अभी अभी बंदर से, पहले सारे बंदर ही थे, बंदर से बन गया मानव, बंदर चार पैर से चलता था, फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, खड़ा होना शुरू किया, फिर आगे के पैर हो गए उसके हाथ, और पीछे की पूंछ अंदर घुस गई और बन गया मानव, बन गया। और ये अभी अभी हुआ, आधे से अधिक लोग तो ऐसे समझते हैं, ये ठीक है महाराज, ठीक कह रहे, ऐसे तो हमने पढ़ा सुना है, ठीक है ठीक है। ये ठीक नहीं है, हम बंदर की औलाद नहीं है, हम औलाद किसकी है? ब्रह्मा की औलाद है हम। अगर औलाद किसी की है तो हम ब्रह्मा की औलाद, या अमीबा की नहीं है, हमारे बा अमीबा नहीं है, हमारे बा विठोबा है। और मनुष्य कब से, पहले व्यक्ति तो मनुष्य ही था, ब्रह्मा चतुर्मुखी पहला जीव अमीबा नहीं था, फिर धीरे। तो ये सब झूठ मूठ का प्रचार हुआ है और यही हमारी एजुकेशनल सारे विद्यार्थियों को, ये डार्विन रहे इंग्लैंड के थे, वे लंदन के पास उनका गांव था, तो अंग्रेजों ने सारे लगभग विश्व पर अपना साम्राज्य जमाया, तो उन्हीं के अपने देश के ही ये डार्विन, फिर उनका जो सिद्धांत उसको भी उन्होंने, उसका प्रचार प्रसार खूब किया। जहां जहां वे गए वहां के एजुकेशनल सिस्टम में ये डार्विन का सिद्धांत उन्होंने डाल दिया, और यहां तक कि भारत में, जब भारत में भी सिद्धांत पढ़ाया जा रहा था और आज भी पढ़ाया जा रहा है, जब विदेशों में कई स्थानों पर इस सिद्धांत को पहले ही ठुकराया गया है, ये दोषपूर्ण है। ये डार्विन ने तो हमको उल्लू के पट्टे बना दिया, उल्लू बना दिया, और हम लोग भी, भारत के लोग भी नंदी बैल जैसा गुलाम जो थे, हमने सोचा जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो उसी के साथ डार्विन के सिद्धांत को समुद्र में या गटर में फेंक दिया जाएगा। और जो सही सिद्धांत है, गीता भागवत ने जो सिद्धांत समझाए हैं उसको सिखाया जाएगा इस देश में, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। तो दूसरे सिद्धांत के साथ हमारे इतिहास का जो महात्म्य है, महाभारत, और उस वक्त शस्त्रों का उपयोग हुआ, उस वक्त अस्त्रों का उपयोग हुआ, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र। पांच हजार वर्ष पूर्व क्या, कब से है इस संसार में, सृष्टि में, इसका पता लगवाया, हिटलर ने पता लगवाया कि 5000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध में ऐसे ऐसे शस्त्रों का, अस्त्रों का उपयोग किया गया था। उसने कोई जासूस भेजे कुछ और उन्होंने कई सार के हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपिज को कहते हैं, जिसमें शस्त्रों का, अस्त्रों का वर्णन, उसको कैसा उत्पादन उसके करना है, उसका उपयोग कैसा करना है, ऐसा वर्णन वाले ग्रंथ, कोई रेयर दुर्लभ ग्रंथ उन्होंने अपने देश पहुंचा दिए, जर्मनी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है। और कईयों को संस्कृत भाषा का अध्ययन करवाया ताकि वे पांडुलिपि को, उन ग्रंथों को जो संस्कृत भाषा में थे उसको पढ़ के फिर अस्त्र बनाए जाएंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। और हिटलर ने अपना जो झंडा बनाया, फ्लैग, उस पर उन्होंने चित्र खींचा, कौन सा चित्र आप जानते हो, स्वस्तिक, स्वस्तिक जानते हो, तो मटके पर कई कई पर शुभ मंगल, शुभ लाभ, क्या क्या लिखते थे, तब स्वस्तिक का चित्र होता। लेकिन भेद इतना ही था, उसने क्या किया, स्वस्तिक को उल्टा बना दिया, ऐसा होना चाहिए, कैसा होना, ऐसा होना चाहिए ना, तो उसको ऐसा उल्टा कर दिया, तो हुआ। तो बेचारा वो समझा था या उसका विश्वास था, महाभारत के युद्ध के समय उपयोग किए हुए शस्त्रों में। लेकिन हमारे देश के महात्मा गांधी का वो इसमें विश्वास नहीं था, ये भी कहना पड़ रहा है आपको, महात्मा गांधी का विश्वास नहीं था महाभारत के युद्ध में, क्योंकि भगवद गीता का अर्थ वो और निकालना चाहते थे, भगवद गीता का रहस्य अहिंसा, तो अगर महाभारत में अगर युद्ध हुआ, ऐसा अगर महाभारत का वर्णन है, तो फिर उनको जो भी अर्थ निकालना था गीता से अहिंसा का, तो भगवान ने तो वहाँ हिंसा करवाई, या भगवान अर्जुन को प्रेरित किया युद्ध करने के लिए। तो गांधी जी अपने एक ग्रंथ में माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उसका अंग्रेज हिंदी में क्या, मराठी में क्या है, सत्य सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के साथ वाले कोई प्रयोग, आपने नाम सुना ऐसा कोई किताब का, हमने पढ़ा भी है देखा भी है। उन्होंने सत्य के साथ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, तो प्रभुपाद तो कहते एक्सपेरिमेंट ट्रूथ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता, ट्रूथ के साथ सत्य के साथ कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वम एतद् ऋतम मन्ने यन्माम वदसि केशव, अर्जुन ने तो कहा प्रभु आप जो भी कह रहे हो सत्य कह रहे हो, और वो सारा का सारा मुझे मंजूर है। ये नहीं कि अब इसको लेबोरेटरी में ले जाऊंगा मैं और प्रयोगशाला में जांच पड़ताल करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो फिर बाद में हा या ना बाद में, ऐसा अर्जुन का स्टैंड नहीं था। आप सत्य कह रहे हो पूरा मुझे मंजूर है, लेकिन नाम के शायद इस प्रकार प्रातःकाल ही हमने कुछ संकल्प लिया था कि निंदा नहीं करेंगे किसी की, लेकिन जो व्यक्ति गुमराह कर रहे हैं भागवत धर्म और महाभारत जो इतिहास है उसके विरोध में, या उसको कल्पना समझ रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई साबित कराता है, समन कुड प्रूव ये महाभारत सचमुच महाभारत का युद्ध हुआ, जहां कई सारे लोगों की हत्या हुई मारे गए, तो ऐसा प्रूफ अगर कोई मुझे देता है तो उसी समय मैं जिस धर्म का मैं सदस्य हूं उसका त्याग पत्र मैं दे दूंगा, आई विल रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ दिस रिलीजन कॉल्ड हिंदुइज्म। समवन कुड प्रूव दैट ये सचमुच युद्ध हुआ, ये अपने उनके हस्ताक्षर में ही है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर महात्मा कहा जाए। ऐसे कई अच्छी बातें भी प्रभुपाद ने कही है इनके संबंध में, और हम भी कहते हैं, लेकिन ये नहीं समझना कि हर बात, कई बात अच्छी बातें कार्य किया उन्होंने, लेकिन ये जो बात है ये वैष्णवों को जचती नहीं है, उनका विश्वास नहीं था, तो कईयों का विश्वास नहीं है। महाभारत इतिहास है इस बात पर जिसमें गांधी जी भी थे, ये कहने का तात्पर्य है, लेकिन वे अकेले नहीं है, कई है आज भी है। तो अंग्रेजों का विश्वास नहीं था इसलिए उसके विरोध में प्रचार किया उन्होंने, तो अगर महाभारत कल्पना है तो फिर भगवद गीता भी कल्पना हो गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। आप वहां जाइए तो वहां वह दिखा आपको दिखाया जाएगा भगवान का रथ। अर्जुन ने जब कहा हे प्रभु मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में खड़ा तो कीजिए ताकि मैं देख सकूं किनके साथ मुझे युद्ध करना है। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मे च्युत अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में ही खड़ा कीजिए। तो भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया, दोनों सेना के मध्य में खड़ा किया। तो कुरुक्षेत्र में आप जाओगे तो वो स्थान भी आप देख सकते हो जहां भगवान का रथ, भगवान ने, भगवान का रथ नहीं था, था अर्जुन का। भगवान तो केवल चालक थे, ड्राइवर बने थे, पार्थ के सारथी बने थे। जहां वो रथ खड़ा हुआ और जहां ये गीता का उपदेश अर्जुन ने, अर्जुन को भगवान ने सुनाया, और केवल अर्जुन ने ही नहीं सुना, वहां एक पेड़ भी था, उस पेड़ ने सुना तो वो पेड़ भी अक्षय बन गया। रीव वो पेड़ भी अजर अमर हुआ, आज भी है उसका साक्षी। उसी स्थान को ज्योति सर कहते हैं कुरुक्षेत्र में, ज्योति सर, ज्योति का स्रोत। कौन सी ज्योति? ज्ञान की ज्योति, भगवत गीता की ज्योति, ज्योति सर। इसीलिए प्रातःकाल भी हम लोग, या वही है, वो हरिदास, हरिदास ही कह रहे थे श्रद्धा के साथ सुनो, विश्वास के साथ सुनो। श्रद्धा वाल लभते ज्ञानम, और फिर उल्टा है तो संशयात्मा विनश्यति। तो इसी भूमि में जहां हम लोग बैठे हैं, कई सारे पुराण इतिहास लिखे गए। तो इतिहासों में हमने महाभारत की इतिहास होने की बात, और वो इतिहास है, ये समझाने के लिए सब कुछ कहना पड़ा। महाभारत क्या है? क्या है महाभारत? इतिहास है, हिस्ट्री है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, या कोई मनोधर्म नहीं है किसी का। इतिहास है, फैक्ट्स है, जिसके जहां पर भगवत गीता ने जन्म लिया, गीता जयंती जो हम लोग मनाते हैं, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः। तो वो गीता कुरुक्षेत्र की और नैमिषारण्य का श्रीमद् भागवत, ये हमारे धर्म के दो महान ग्रंथ है। रामायण को भी जोड़ सकते हैं राम के संबंध का, रामायण। तो रामायण, गीता, भागवत, ये प्रधान ग्रंथ है हमारे धर्म के, और ये ग्रंथ आधार है हमारे धर्म के। इस ग्रंथ पर स्थित है हमारा धर्म, ये ग्रंथ ही है हमारे धर्म की नींव या फाउंडेशन। तो नींव अगर मजबूत है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो फिर हम लोग मंजिल खड़ी कर सकते हैं, बहुत ऊंची मंजिल, प्रासाद, गगनचुंबी प्रासाद। कैसे प्रासाद? जो गगन को चुंबन करने वाले प्रासाद ऐसे खड़े कर सकते हैं धर्म का, धर्म की ध्वजा, धर्म की। प्रभुपाद जो फैलाए, सारे विश्व भर में फैला रहे हैं धर्म की ध्वजा, जय पताका, जय हो, जय हो, जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का और क्या, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। जय हो। तो प्रभुपाद भारत के गौरव को बढ़ाए विश्व भर में। भारत जब नकल कर रहा है सारे विदेश की, एक समय तो अंग्रेज ही हमारे स्वामी थे, अब तो कई सारे हो गए। स्वतंत्र होने के बाद तो हमारे कई सारे हमारे आदर्श हो गए, उनकी हम नकल करने में बड़े कुशल है। लेकिन प्रभुपाद ने उल्टा किया, या उल्टा किया कि सुल्टा किया, सुल्टा किया, सही किया, भारत के गौरव को सारे विश्वभर में फैलाया। ऐसे प्रभुपाद के आप सच्चे अनुयायी बनिएगा, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़िएगा, तो फिर गीता भागवत के जो भावार्थ है, तात्पर्य है, उसका जो मर्म है, उसको हम सभी समझ सकते हैं। और इसी में विश्व का कल्याण है, हमारा भी और विश्व का भी। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।